आज 3 नंबर की जो कारिका है वहाँ से पाठ प्रारंभ हो रहा है। कारिका का व्याख्यान इस ग्रंथ में है, तो व्याख्यान में पहले भूमिका बताई जाती है, वह प्रसंग बताया जाता है कि किस प्रसंग में यह कारिका जो है यहाँ पर ग्रंथ में उद्धृत है। तो वह जो प्रसंग है उसमें कहते हैं ग्रंथ में कि ननु आख्यातस्य कर्तृकर्म सक्तत्वे। आख्यात का अर्थ तिंग होता है, तो तिंग में कर्तृकर्म का सक्तत्व रहता है। ऐसा पहले बताया गया है कि आश्रयेतु तिंग स्मृताः, कि तिंग का अर्थ जो है आश्रय है, और आश्रय का मतलब फलाश्रय व्यापार आश्रय, और फलाश्रय कर्म कहलाता है और व्यापार आश्रय कर्ता कहलाता है, ये सब आप जानते हैं। तो कर्ता और कर्म ये दोनों अर्थ जो हैं ये हैं किनके, आख्यात के, तिंग के अर्थ हैं। तो शब्द जो होता है ना उसको शक्त कहा जाता है। शक्त का मतलब हुआ जिसमें अर्थ बताने की शक्ति हो, उसको हम शक्त कहते हैं। जैसे व्यवहार में भी होता है ना कि यह व्यक्ति बहुत ही सशक्त है, सशक्त है मतलब बहुत ही शक्ति से संपन्न है। तो ऐसे ही कर्तृकर्म सक्तत्वे, इसमें शक्त शब्द जो है उसका अर्थ हो गया शक्ति संपन्न अथवा शक्ति से युक्त। तो पद जो है वह शक्त होता है और अर्थ जो है उसको हम शक्य कहते हैं। तो पद में कौन सा धर्म रहेगा, सक्त में त्वा लगा दो तो सक्तत्व धर्म रहेगा, और अर्थ में कौन सा धर्म रहेगा तो शक्य में त्वा लगा देंगे तो शक्यत्व धर्म रहेगा, ठीक है। तो कर्तृकर्म जो है यह अर्थ है किसका, तिंग का। तो कर्तृकर्म में शक्यत्व रहेगा, कर्तृकर्म अर्थ में, और आख्यात रूप जो शब्द है, तिंग रूप जो पद है, उसमें कर्तृकर्म शक्तत्व रहेगा। क्लियर। तो वही कह रहे हैं कि आख्यातस्य माने तिंग, तिंग का कर्तृकर्म शक्तत्व सती, कर्तृशक्तत्व और कर्म शक्तत्व रहने पर पचति इत्यत्र उभय बोधापत्ति ही। फिर पचति में जो ती है, तिंग है, आख्यात है, उसमें उभय बोध की आपत्ति होगी। उभय बोध माने कर्तृबोध और कर्म बोध, उभय मतलब दोनों होता है ना, तो दोनों बोध की आपत्ति होने लगेगी, क्योंकि आपने आख्यात में कर्तृशक्तत्व भी माना है और कर्म शक्तत्व भी माना है। तो दोनों जब मानेंगे तो जहाँ पर भी आख्यात रहेगा वहाँ पर दोनों ही बोध की आपत्ति होगी, कर्ता बोध की भी और कर्म बोध की भी, ठीक है। ये प्रश्न किया गया। आगे फिर उसी को बताते हैं कि कर्तृमात्र बोधवत। अच्छा, जबकि होता क्या है, पचति में ती से जो है ना केवल कर्ता मात्र का बोध होता है, और जब कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं पच्यते, तो उसमें जो पच्यते में तो विभक्ति है उससे जो है कर्म मात्र का बोध होता है। लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया, अभी तक सीधे कहा है कि आख्यात में कर्तृकर्म सक्तत्व है, अर्थात आख्यात का अर्थ कर्ता और कर्म दोनों होता है। तो जब ऐसा आप कहेंगे तो क्या होगा कि जहाँ भी आख्यात रहेगा, चाहे वो पचति में रहे चाहे पच्यते में रहे, वहाँ पर उभय बोध की आपत्ति होगी, दोनों बोध होने लगेगा, कर्ता का भी बोध होने लगेगा और कर्म का भी बोध होने लगेगा। वही कहा कि कर्तृमात्र बोधवत, जैसे कर्ता मात्र का बोध होता है उसी तरह से कर्म मात्रस्य अपि बोधापत्ति, उसी तरह से कर्म मात्र का भी बोध की आपत्ति होने लगेगी। तात्पर्य ये है कि आख्यात के दो अर्थ जब हम मानते हैं कर्ता और कर्म, तो ये हो गया अनेकार्थक शब्द, नानार्थक शब्द, और जहाँ पर नानार्थक शब्द होता है वहाँ पर कौन सा अर्थ जो है हम ग्रहण करें, कौन सा अर्थ छोड़ें, इसका संदेह होने पर वहाँ पर प्रसंग देखा जाता है कि यह किस प्रसंग में आया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सैंधवम आनय, तो सैंधव जो है यह नानार्थक शब्द है। सैंधव का एक अर्थ होता है घोड़ा और दूसरा अर्थ होता है सैंधव का नमक। तो जब कोई कहेगा कि सैंधवम आनय माने सैंधव लाइए, तो वहाँ पर क्या अर्थ समझना है, नमक समझ करके नमक लाना है या घोड़ा अर्थ समझ करके घोड़ा लाना है, उसमें प्रसंग देखा जाता है कि किस प्रसंग में है। अगर यात्रा के प्रसंग में कोई कहेगा सैंधवम आनय तो उस समय में सैंधव का अर्थ घोड़ा समझा जाएगा और लाने वाला जो है वह घोड़ा लाएगा। और भोजन के समय में अगर कोई कहे सैंधवम आनय तो उस समय में सैंधवम का अर्थ नमक लिया जाएगा और लाने वाला जो है वो नमक लाएगा। इस तरह से जहाँ नानार्थक शब्द होता है वहाँ पर प्रसंग देखा जाता है। इसी तरह से जहाँ पर एक ही पद के दो अर्थ हों या दो से ज़्यादा अर्थ हों तो वहाँ पर किस अर्थ को लेना है, किस अर्थ को छोड़ना है, कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, इस तरह की जब जिज्ञासा होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें कोई तात्पर्य ग्राहक है क्या। तात्पर्य ग्राहक का मतलब ये है वक्तु इच्छा तात्पर्यम, बोलने वाले की जो इच्छा है, वक्ता की जो इच्छा है उसको कहते हैं तात्पर्य। तो वक्ता ने क्या सोच करके बोला है, इस तरह का की बात को ग्राहक माने ग्रहण कराने वाला, बताने वाला वहाँ पर अगर कोई है तो व्यक्ति निर्णय कर लेगा कि इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा। तो तात्पर्य इसमें आख्यात के दो अर्थ हैं, कर्ता और कर्म। तो पचति में या पचते में जबकि एक एक अर्थ ही का ही बोध होता है, लेकिन अब क्या होगा, दोनों अर्थ के बोध की आपत्ति आएगी। फिर ऐसी स्थिति में कोई न कोई तात्पर्य ग्राहक जो है ग्रंथकार को बताना चाहिए कि ऐसा रहेगा तो कर्ता अर्थ होगा और ऐसा रहेगा तो कर्म अर्थ होगा। तो ये जो बताने वाला है कि ऐसा रहने पर ऐसा अर्थ, इसी को कहते हैं तात्पर्य ग्राहक माने वक्ता की इच्छा को ग्रहण कराने वाला, वक्ता की इच्छा को बताने वाला जो है वह ग्रंथकार को बताना चाहिए। इसलिए आह उसी तात्पर्य ग्राहक को जो है ग्रंथकार बताते हैं। क्या बताते हैं तो अगली कारिका में है, तीन नंबर की कारिका में, कि फल व्यापार यो तत्र फले तंग यक चिणादय व्यापारे शप स्नमाद्यास्तु द्योतयन्ति आश्रयान्वयम्। पहले तो मैं बहुत ही सरलता से समझा देता हूँ कि तंग यक चिण आदय, तंग विभक्ति यक जो होता है, यक का आगम होता है सार्वधात के यक सूत्र से, और तंग होता है किसे, भाव कर्मणो हो माने भाववाच्य में और कर्मवाच्य में भाव कर्मणो सूत्र से तंग विभक्ति होती है। तो जहाँ तंग विभक्ति हो अथवा और यक माने सार्वधातु के यक से भाववाच्य और कर्मवाच्य में यक होता है, तो जहाँ यक हो और चिन्ह जहाँ पर चिली प्रत्यय के स्थान में चिन्ह आदेश हुआ हो, तो ये सब जहाँ पर हो वहाँ पर जो है ना कर्म अर्थ समझना चाहिए। जैसे पच्यते है, पच्यते में ते है मतलब इसमें तो विभक्ति है। अच्छा पच्य य जो दिखाई दे रहा है ना पच्यते में, वह य जो है वो सार्वधातु यक से जो यक हुआ है वह य है। और ये चिन्ह जो होता है ना ये लट लकार में तो होता नहीं है, तो तंग यक जो है पच्यते में है, तो तंग यक जो है वहाँ तात्पर्य ग्राहक होगा, वही तंग यक जो है हमें बताएगा कि वक्ता यहाँ जो है ना पच्यते के द्वारा, पच्यते में जो तो विभक्ति है आख्यात है उसके द्वारा कर्म अर्थ को बताना चाह रहा है। तो ये तंग और यक जो है पच्यते में तात्पर्य ग्राहक होगा, कर्म अर्थ का तात्पर्य ग्राहक होगा, तो उससे हम केवल कर्म अर्थ को समझेंगे, कर्ता अर्थ की आपत्ति वहाँ पर नहीं आएगी। ऐसे ही जब लुंग लकार का प्रयोग होगा तो उसमें चिली के स्थान में भाववाच्य और कर्मवाच्य में चिण आदेश होता है। तो जैसे अपाची पच धातु का लुंग लकार में रूप बनेगा अपाची, तो अपाची में चिली को चिन्ह हुआ है, उस चिन्ह को देख करके जो है वही तात्पर्य ग्राहक होगा चिन्ह प्रत्यय या चिन्ह आदेश कह लो, कि चिन्ह आदेश जो है तात्पर्य ग्राहक होगा किस अर्थ का, कर्म अर्थ का। तो जहाँ पर तंग हो, यक हो, चिन्ह हो और इस तरह से भाववाच्य कर्मवाच्य में होने वाले जो कार्य हैं, वो सब के सब जो हैं कर्म अर्थ के तात्पर्य ग्राहक होते हैं। अर्थात ये जहाँ रहेंगे वहाँ पर कर्म केवल कर्म अर्थ का ही बोध होगा। इसी तरह से अब कर्ता अर्थ का बोध कहाँ होगा, उसका तात्पर्य ग्राहक कौन है, तो सप्स्नम आद्यास्तु। जैसे कर्तरी शब्द से हम सप प्रत्यय करते हैं, उसको सूत्री कहता है कर्तरी, माने कर्ता अर्थ में सप प्रत्यय हो। ऐसे ही स्नम रुधादिभ्य स्नम, रुधादि धातु जो है उसमें विकरण स्नम विकरण होता है, तो स्नम प्रत्यय जहाँ हो। और आदि कहा, आदि से बाकी भी प्रत्यय आप ले सकते हैं, जैसे दिवादिभ्य श्यन, दिवादि धातु से श्यन प्रत्यय होता है। फिर रुधादिभ्य स्नुहु, स्नु प्रत्यय होता है। इस तरह से जहाँ ये विकरण सब हो, स्नप सप स्नम स्नु आदि श्यन, इस तरह से जहाँ विकरण हो वहाँ पर वह कर्ता अर्थ का तात्पर्य ग्राहक होता है। माने यह विकरण या ये प्रत्यय बताता है कि यहाँ पर वक्ता पचति के द्वारा अथवा राधनोति के द्वारा अथवा दिव्यति के द्वारा अथवा क्रीनाति में जो स्ना प्रत्यय है, तो क्रीनाति के द्वारा कर्ता अर्थ को बताना चाहता है। और इसलिए श्रोता जो है वहाँ पर सप स्नम आदि को देख करके केवल कर्ता अर्थ ही समझेगा, कर्म अर्थ नहीं समझेगा। तो इस तरह से जो आपत्ति थी कि अगर हम आख्यात के दो अर्थ मानते हैं, कर्ता अर्थ और कर्म अर्थ, तो आख्यात जो है वह तो तीनों वाच्यों में रहता है, कर्तृवाच्य में भी, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी, तो कैसा भी प्रयोग हो आख्यात तो रहेगा ही रहेगा। और आख्यात रहेगा तो फिर दो दो अर्थ जो है उनका बोध होने लगेगा। ये जो आपत्ति थी उसका निराकरण किया गया कि ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर तंग यक चिन्ह आदि तात्पर्य ग्राहक होगा कर्म अर्थ का, और सप स्नम स्यन आदि जो है वह तात्पर्य ग्राहक होगा कर्ता अर्थ का। तो इस तरह से जो जिसका तात्पर्य ग्राहक होगा वहाँ प्रयोग में, वहाँ पर उसी अर्थ का, केवल एक अर्थ का बोध होगा, दोनों का बोध नहीं होगा। तो जो आपत्ति दी गई थी उस आपत्ति का समाधान किया गया, ये मैंने समझाने के लिए बोला। अब कारिका के अर्थ को हम देखते हैं। ये फल व्यापार यो हो, ये जो फल और व्यापार, ये जो दो अर्थ हैं, ये किसके अर्थ होते हैं, धातु के अर्थ होते हैं। तत्र मान इन दोनों अर्थों में फले तंगयक चिनादय आश्रयान्वयम द्योतयंती, ये जो लास्ट में है ना, द्योतयंती आश्रयान्वयम, इसमें आश्रयान्वयम को पहले रखते हैं, द्योतयंती को बाद में करते हैं, तो क्या होगा, आश्रयान्वयम द्योतयंती। तो ये आश्रयान्वयम द्योतयंती को दोनों जगह लगाना है, तंगयक चिनादय के आगे भी लगाना है और सप्स्नमाद्यास्तु के आगे भी लगाना है। तो फिर कैसा अन्वय होगा, तो एक बार मैं अन्वय बोलता हूँ कि फल व्यापारयोस्तत्र फले तंगयक चिनादय आश्रयान्वयम द्योतयंती। और फिर दूसरा क्या होगा कि व्यापारे सप्स्नमाद्यास्तु आश्रयान्वयम द्योतयंती। इस तरह से अन्वय हुआ। जब अन्वय हुआ तो फिर इसका अर्थ करना आसान हो जाएगा कि फल व्यापार इन दोनों अर्थों में से फले माने फल में तंग यक चिन्ह आदि जो है हैं, वो आश्रयान्वय को द्योतित करते हैं, आश्रय में अन्वय को द्योतित करते हैं। तो प्रश्न उठेगा किसके आश्रय में, तो कहा फले माने फल के आश्रय में अन्वय करने के लिए द्योतित करते हैं। तो फल का आश्रय क्या होगा, वही कर्म ही होगा, तो कर्म का जो है फल में अन्वय होगा, ऐसा कौन बताएगा, तंगयक चिन्ह आदि बताएगा। इसी तरह से व्यापारे सप्स्नमाद्यास्तु आश्रयान्वयम द्योतयन्ति, और व्यापार अर्थ में उसका जो आश्रय है माने व्यापार आश्रय कर्ता जो है, उस कर्ता के अन्वय को सप्स्नम आदि जो है वह द्योतित करेगा माने बोधित करेगा। तो इस तरह से इन्होंने शास्त्र की भाषा में बताया, कर्ता कर्म नहीं कह करके आश्रय को कहा, और तात्पर्य ग्राहक होता है, इस तरह डायरेक्ट नहीं कह करके उन्होंने कहा कि द्योतित करता। अब आगे कौंडभट्ट भी जो है इसकी स्वयं व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि तंगादयः फले आश्रय अन्वयम द्योतयन्ति, कि तंग आदि जो है, आदि माने वही यक चिन्ह आदि, ये सब फले आश्रय अन्वयम द्योतयन्ति, माने फल में आश्रय का अन्वय द्योतित करता है, माने कर्ता का अन्वय फल में हो ऐसा द्योतित करता है, ऐसा बताता है। फला फल अन्वयी आश्रयस्य कर्मत्वात्, और फल में जो अन्वयी होगा, अन्वयी कहते हैं जिसका अन्वय किया जाए वह हो गया अन्वयी, तो यहाँ पर आश्रय का अन्वय किए हैं फल में, तो अन्वयी कौन होगा? आश्रय। इसलिए कहा कि फल अन्वयी आश्रयस्य, फल में अन्वय होने वाला जो आश्रय, अन्वय अन्वित होने वाला जो आश्रय है, तस्य कर्मत्वात्, उसी में कर्मत्व रहता है, माने वही कर्म होता है। तद द्योतकः, और उस कर्मत्व का द्योतक जो है बोधक, द्योतक माने बोधक, उसका बोधक जो है वही हुआ कर्म द्योतकः। व्यापार अन्वयी आश्रय से कर्तृत्वात्, जैसे फल का अन्वयी जो आश्रय है वह कर्म होता है, उसी तरह से व्यापार का अन्वयी जो आश्रय होगा वह कर्ता होगा। तद द्योतकः माने कर्ता, कर्तृ द्योतकः इति समुदायार्थ, ये पूरे श्लोक के समुदाय का अर्थ हुआ। द्योतयन्ति का अर्थ बताते हैं तात्पर्यम ग्राहयन्ति, मैंने क्या बताया था, द्योतयन्ति माने बोधयन्ति, माने बोध कराता है, इन्होंने कहा द्योतयन्ति का अर्थ है तात्पर्यम ग्राहयन्ति, तात्पर्य का ग्रहण कराता है, तात्पर्य का बोध कराता है। अब एक चीज आप जान लीजिए कि जहाँ संदेह होता है ना, तो संदेह किस में होता है? तात्पर्य में संदेह होता है, कि वक्ता का किस अर्थ में तात्पर्य है, इस अर्थ में तात्पर्य है या उस अर्थ में तात्पर्य है। तो इस तरह से जब तात्पर्य में संदेह होगा, तो वहाँ पर तात्पर्य ग्राहक के द्वारा, तात्पर्य बोधक के द्वारा ही जो है निर्णय लिया जाता है। और यहाँ पर भी तंगयक चिन्ह आदि जो है वह कर्म अर्थ का तात्पर्य ग्राहक है, और सप्स्नम आदि जो है वह कर्ता अर्थ का तात्पर्य ग्राहक है। तो तात्पर्य ग्राहक के द्वारा हम तात्पर्य का निर्णय कर लेंगे, अर्थ में संदेह नहीं होगा, दोनों अर्थ के बोध की आपत्ति नहीं होगी। इस तरह से तीन नंबर की कारिका में आपको प्रश्न भी बताया और समाधान भी बताया। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं।